Hare Krishna. आद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कन फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की नित्यला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कुटी वैष्णव भक्त की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथ कृत्र श्रीराचल धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी जमुना देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त गाय गौर हरि प्रेमानंदे ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आज श्री खेत्री जी के भवन में जो आप सुधी जन वृंद पधारे हैं सायंकालीन सत्संग के लिए सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से स्वागत करता हूँ। अब उनका घर में तो छोटा मोटा मंदिर बना रखे हैं। मंदिर में जो दिनचर्या और भागवत कथा आदि होना चाहिए यथाविधि कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम जब हम लोग आ रहे हैं, मुझे सुंदर लाल जी बता रहे थे हर मंडे को शायद कर रहे हैं, एवरी वीकेंड गुड। भक्त विनोद ठाकुर एक हमारे आचार्य हैं, उन्होंने कहते थे जेदिना गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय। घर में जिस दिन कीर्तन भजन होता है उस दिन घर घर नहीं रह कर रह जाता है, वो तो गोलक वृंदावन जैसा वातावरण प्राप्त करता है। तो इस कलि युग में गृहस्थ आश्रम में रह करके नाना प्रकार के जंजाल, नाना प्रकार के तनाव, नाना प्रकार के परेशानी के अंदर जीवन को जीते हुए भी अगर हम भगवत नाम कीर्तन, भगवत कथा और भगवत उपासना आराधना आदि को कर पाएं तो यही है जीवन को सफल करने का एक अति सुगम विधि। सारे संत, सारे महात्मा शास्त्र में भी विशेष करके कलिजुग के लिए ये उपाय बता गया, कलिजुग केवल नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तीन बार नकारते हुए शास्त्र कहते हैं कि कलिजुग में और कोई उपाय नहीं, न ज्ञान न ध्यान न कर्म, केवल भक्ति केवल नाम। सबको नकारते हुए और तीन बार अस्ति वचन करते हुए नाम एव नाम एव नाम एव केवलम, केवल यही पंथा है। तो हरिनाम करने के लिए कोई बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है क्या? नहीं लगता है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम ये भी नहीं लगता है। कुछ बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करना ये भी नहीं लगता है। तो फिर क्यों नहीं हम कर पाते? हाँ, एक हमारा पास ऐसे चीज है, सभी का पास है, अभी तक है, कितने साल से हम उसको रखे हैं लेकिन अभी तक पता है वो मोटा है कि पतला है, काला है कि गोरा है, ऊंचा है कि नीचा है, वो भी नहीं पता है, लेकिन कंट्रोल उन्हीं के द्वारा हो रहा है। पता नहीं क्या अद्भुत है। जिसको हम अपना मन कहते हैं हम उसको पहचानते तक नहीं पहचानते। अगर आपका मन कोई रूप लेकर के आपके सामने आकर खड़ा हो जाए तो बोल सकते हैं क्या ये मेरा मन है? नो, वी डोंट नो। लेकिन हर सेकंड में जो भी कुछ किया जाता है और उसी की आकड़ेंगली करते हैं, है ना? मेरा मन नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता, मेरा मन नहीं होता, मेरे मन, अरे तेरा मन क्या है? तेरा मन ये केवल आज की समस्या नहीं है। द्वापर में कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में जो अर्जुन जैसे महाधनुर्धर कृष्ण के राइट हैंड उनके सखा उनके भक्त, वो जब नंदीघोष रथ में विराजमान थे, उनके सामने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण साक्षात दंडायमान थे, उनके सामने खड़े होकर के इतने सामर्थ्यवान अर्जुन, अर्जुन जैसे सामर्थ्यवान उनके लिए कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले जब उनके उनके पिताजी के पास गए थे, पिताजी कौन जानते हैं उनके? इंद्र, इंद्र पुत्र हैं, स्वर्ग गए थे उन्होंने, हाँ, इंद्र के यहाँ रुके थे जा करके, तो इंद्र ने उनको अपने सभा भवन में बुलाया था अमरावतीपुर में, तो वहाँ पे अप्सराओं के नृत्य देख रहे थे उन्होंने, तो वहाँ तक कि उर्वशी अप्सरा आकर्षित होकर के उनके पास आया था और अर्जुन उनको प्रणाम किए, बोले नहीं तुम हमारे वंश के माँ हैं। 49 पीढ़ी पहले पुरुर्वा महाराज करके थे, उनकी पत्नी उर्वशी थी, अर्जुन के जमाने के 49 पीढ़ी पहले अर्जुन ने इतिहास को सुना था, तब आज उर्वशी बहन यही उर्वशी थी, बार बार देख रही थी, यही है, यही हमारे दादा परदादा 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 49 बार करने के बाद पत्नी वो थी। एक्चुअली जो अप्सरा होते हैं, स्वर्गीय देवी होते हैं, उनको उम्र तो नहीं होता, तो हमेशा एक रस रहते हैं। हम लोग बुढ़ा के मर जाते हैं, थोड़े दिन 100 साल के अंदर का मन जाता है, लेकिन उनका तो ऐसे नहीं होता। तो अर्जुन के पास आए तो अर्जुन उनको मांग करके स्वीकार किए, उन्होंने गुस्सा किया, व्हाट यू आर डूइंग, ये क्या? बोले ना तो उन्होंने गुस्सा होकर उनको साफ दी, मैंने अर्जुन का देखिए उनका समशक्ति, उनका मन उनका कितने कंट्रोल में था, कितने संयम था उनका इंद्रिय के ऊपर। अकेले स्वर्गपुरी को भोगपुरी कहा जाता, हरेक प्रकार के भोग सामग्री से लेस हुआ है स्वर्गपुरी, किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार की कमी। वहां पे स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी आए उनके पास और उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किए, प्रणाम किए पैर में, बोले तमाम। जबकि कोई देखे तो अर्जुन के एज से उर्वशी के एज और कम मालूम पड़ती थी, क्योंकि वो अप्सरा है स्वर्गीय, लेकिन फिर भी स्वीकार नहीं किए। तो इसलिए उर्वशी फेल मार गए, उनके हर प्रकार के काम विभाव से अर्जुन प्रभावित नहीं हो पाए, और हार करके गुस्सा हार के उनको साफ दिए, तुम कावड़ हो, तुम ये नपुंसक हो जाओ। वो बोले मैं आपके ही पुत्र के समान, चलो एक साल तक तो होना पड़ेगा। इतने बड़े संयमित पुरुष थे, आज उन्होंने कह रहे हैं भगवान को कि वायुरेव सुदुष्करम, ये मन को बस में करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, निग्रह नहीं किया जा सकता है। आप कहते हैं मन को निग्रह करो, वो तो असंभव है। वायु को मैं अपना कंट्रोल में ले सकता हूं, जो हवा चलता है भले कोई प्रकार से मैंने कंट्रोल में कर सकता हूं, लेकिन चंचल ही मनं कृष्ण प्रमाथी बलवत् दृढ़, महाप्रबल है बलवत् महादृढ़ है वायु रेव दुष्कर्म। वायु को कंट्रोल करने से भी उससे ज्यादा दुष्कर कर्म है मन को भस्म कर लेना। भगवान कहले असंशय तो महाभा, कोई संशय नहीं, जो बोला बिल्कुल परफेक्ट। हाँ मैं मानता हूं, मन ऐसा है, एक इंद्रिय ऐसा है जो देखने में नहीं आता, बाकी सारे इंद्रिय तो देखते हैं, छूते हैं, समझ लेते हैं, हमारा आंख नाक कान जिह्वा आदि, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, देखने में नहीं आता, कहाँ छिप कर बैठता है और ऐसे नचा डालता है हमको कि उसको संभाल के रखना बड़बत दृढ़म महादुष्कर काम है, नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं, तो फिर क्यों बोलते हैं मैं आसक्त मानो मन पार्थ मन मना, मन को संयत कर ले, मन को बस में करने के लिए बोलते हैं भगवान। अर्जुन मन को जब तक संयत नहीं करेगा तो किसी भी कर्म में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। विशेष करके तू भक्ति करना चाहते हो, मेरे पास आना चाहते हो, तो तेरे शरीर से मेरा क्या काम है, तेरे मन से काम, तेरा मन से काम है मेरा। हम कभी कभी कहते हैं भगवान की सेवा तीन कार्य में होता है, तन से मन से धन से, जानते ना, इन तीनों से सबसे अच्छा कौन है, मन से, और सेकंड तन से। अच्छा, तन मन धन ऐसे कहते हैं कि तन मन शरीर, शारीरिक सेवा, स्वयं आकर के भगवान की सेवा पूजा करना, अपने शरीर के द्वारा सेवा अर्पण करना, यह है तन की सेवा। अगर आप खुद नहीं जा पाए तो आपके उपार्जित धन के द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं, धन दान करके। अगर दोनों ही नहीं कर पाए, महा आलसी है, बहुत बिजी है, चल मन मन में कर लो, तो आप उसको बोलते हैं सबसे अच्छा है, जाऊंगा नहीं, कुछ दूंगा भी नहीं, यही बटे बटे मन मन कर लूंगा, आप बोलते हैं यही सबसे अच्छा है नहीं, इसे पता चलता है आपको। लेकिन बात अब सही कह रहा है, मन की सेवा सबसे उत्तम कोटि की सेवा है, क्योंकि मन जहां रहेगा धन और तन उसका पीछे भागते जाएगा। अगर मन नहीं है, ये दोनों कितने जाए, जाकर एक दो बार झगड़ा करके फिर वापस आए। मन जहां है तन भी हो जाए धन भी हो जाए, तो मन रहना चाहिए भगवान। अब भगवान को तन और धन से का मतलब ही नहीं, वो नहीं चाहते हैं, क्या देंगे उनका पास क्या नहीं है, वो तो त्रिलोक ईश्वर है। ईशावश्यम इदम सर्वम जत किंचत जगत्यम जगत, पूरे विश्व में जो कुछ हम देख रहे हैं जो कुछ है सब कुछ का ईश्वर सब उनका ही है, और कोई नहीं बोल सकता उनके, सभी उनका है, हम सभी उनका ही है। तो उनको किस चीज का आवश्यकता है, कोई चीज का आवश्यकता नहीं। हम उनको सेवा क्या करें, हम उनको सेवा करने का हमारा योग्यता क्या है, हमारे पास योग्यता है उनको सेवा करने के लायक, क्या योग्यता है, हर प्रकार से कमी है हमारे पास। हमारे पास योग्यता की, सेवा करने की योग्यता की कमी है, और उनके पास योग्य सेवक की कमी नहीं है, तो क्यों चाहेंगे हमारे जैसे नालायक को, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुरभीर अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जिनका गांव बाड़ी घर मकान ये टाइल से मालवर से नहीं, कैसे बना है, चिंतामणि, चिंतामणि प्रकर सदमसु, उनका फर्श दीवार आदि सब चिंतामणि से बना है। चिंतामणि तो हम सुने केवल नाम, सुनने देखे कभी, देख देखना तो हम देख भी नहीं सकते, नाम केवल सुनते हैं। और उनका प्रभाव ऐसा है, चिंतामणि एक पत्थर है जिसका नाम है पारस पत्थर। पारस पत्थर नाम सुने आपने, उसका क्या पावर के बारे में जानते हैं, लोहे को सुना बना देता है, बाकी किसी को नहीं बना सकता, केवल लोहे को सुना कर सकता। लेकिन ये चिंतामणि जो है उनका महिमा क्या है, आपका मन में जो चिंता होगा उसको भी पूरा कर डालेगा, ये है। ऐसे नहीं केवल लोहे आपके घर में नहीं है तो पारस पत्थर भी काम ही हो जाएगा, लेकिन आपका जो भी कुछ है उसमें जो कुछ करना जाता है चिंतामणि कर सकता है। आपके घर कभी गंदा होना आप चाहेंगे, हमेशा साफ रखना चाहेंगे ना, आप साफ रखने के लिए इच्छा करे वो चिंतामणि ऐसा ही घर हमेशा साफ रहेगा, गंदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि चिंतामणि है। आप चाहते हैं मेरा घर सुपर फाइन क्लीन रहे, हमेशा क्लीन रहेगा, चिंतामणि करेगा, जो भी चाहे वही कर देगा, कोई नौकर वाकर जरूरत नहीं, झाड़ा पूछ झाड़ू पूछा कोई करना जरूरत नहीं, क्योंकि वही स्वयं चिंतामणि है, आपकी चिंता के अनुसार परिपूर्ण कर देगा काम। जब उनका घर आंगन रास्ता घाट चिंतामणि से बना हुआ है तो उसमें कोई झाड़ू पूछा करने की आवश्यकता है किसको, जरूरत नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं मैं जब देखा, क्या देखा ना, चिंतामणि तो सब बना हुआ था और घर के आंगन जो पेड़ था वो पेड़ भी कोई ऐसा तैसा पेड़ नहीं था, कैसा था, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का महिमा क्या है,
उसके नीचे जो भी मांगो पूरा हो जाता है,
पूरा हो जाता है। एक बार नारद जी के वहां कहीं चला गया था, पूछा बोले कहो भाई तो कल्प वृक्ष ना, वो क्या होता है ना, देखो तो जो मांगे वो दे देगा, ऐसे किसे दे देगा, वो जो पेड़ है वही देगा, दूसरा चीज दे देगा, तो करके देखो। तो बोला अच्छा मुझे बड़ा भूख लग रहा है, सुबह से खाया नहीं, जाके बैठ गया पेड़ के नीचे, बोला मुझे ऐसे ऐसे बढ़िया सुंदर पकवान भरा हुआ प्लेट चाहिए, एक मुहूर्त में उनके सामने आ गया। अरे सही बात है, बनी बने प्लेट पेड़ भी दे दिया, खाया बैठ करके, बोला अगर इतने सुंदर भोजन पाया, अगर अभी बहुत सुंदर तकत मुलायम बेड और बिल्कुल ऐसी जैसा वातावरण हो जाए, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, बिल्कुल ऐसे ही हो गया, सोया उठ करके बैठा, बोला ये सब हो जाता है। अरे मैं जो सोचता हूँ वही हो जाता है क्या, अगर मैं ऐसे सोचूं कोई शेर आए मुझे खा जाए तो मुझे खा जाएगा क्या, बस सो करके खा पी करके सोच ही रहा था, शेर आया और खा भी गया उसको, चिल्लाया ये हो हाँ मरते समझो चिल्ला नारद जोड़ के, क्या ना आप कैसे पेड़ के नीचे मुझे भेज दिया मैं सोचते सोचते शेर आके खा गया, नहीं तो खासी तो उसके क्यों सोचा ऐसा। तो हम लोग का अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा जगत में कोई कल्प वृक्ष अगर दे दे हमारा यही हाल हो जाएगा हमारा मृत्यु हो जाएगा हम गलत सोचने में ज्यादा आदि हैं, अच्छा तो सोचते ही नहीं, हमेशा गलत सोचते हैं तो ही होगा, अच्छा सोचना आता ही नहीं हम। इस भागवत के प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज ने कली को दमन कर रहे थे तो कली को मारने के लिए चले थे, तलवार खींच लिए थे बाहर उसको मार देने के लिए, कली ने उनके शरण में गया, मैं भी आपके प्रजा हूं, मैं आपके शरण में हूं, मुझे रक्षा कीजिए, मुझे जीवन दान कीजिए, गिड़गिड़ाया। परीक्षित महाराज उसको फिर मार सकते, दुष्ट है, गोवर्ध को गाय गोमाता को कष्ट दे रहा था, मार सकते थे, उनका पावर था, नोबडी कैन चैलेंज हिम, उनका अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता था, वो सम्राट थे, सुप्रीम विचारक वही थे। लेकिन कली जब चित हुआ तो फिर भी कली को रहने के लिए स्थान दिए, बोले तू इस जगह में रहो, मेरे राज्य में रहो नहीं। कली बोला ठीक मैं जा रहा हूँ, जाकर ढूंढने को वापस है। बोला राजा एक्सक्यूज मी, आपके राज्य में चार स्थान ही नहीं है, जो चार जगह मुझे रहने के दिया पूरे आपके साम्राज्य में कहीं है ही नहीं। अब जानते ना जो चार संजो चार नियम हम पालन करते वही चार चीज दिए थे, बोले वहीं जाकर रहो कली पुरुष को, बोले वो जाकर ढूंढ के वापस है, बोला है ही नहीं आपके राज्य में कोई ऐसा है ही नहीं, सब रेगुलेटरी म्यूनिसिपल पालन करने वाले कोई है ही नहीं, तो कोई तो जगह दीजिए। तो जाचमानम इदम तस्मे, दोबारा दोबारा जाचना करने से जात रूपम अदात प्रभु, जात रूप मतलब धन सोना ऐसे स्मरण कहते, बोले फिर वहां पर जाकर, बोले ठीक है वहां जाता हूं। लेकिन फिर भी उसको वो बद्ध नहीं किए, बाद में कलयुग का ये दुरावस्था को देख करके सब ऋषि लोग पूछे कि परीक्षित महाराज इतने दूरदृष्टि संपन्न थे, इतने विचारवान राजा थे, समर्थ राजा थे, कलयुग इतने खतरनाक दुष्ट है, इतने अवगुण है उसमें, उसको छोड़े क्यों, तभी क्यों नहीं मार दिए उसको, कल्याण कितना होता लोगों का। तो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी आदि कहते हैं, बोलते हैं परीक्षित महाराज थे सारंग इव सारभ, बोले सार दर्शनकारी, जैसे भ्रमरा बीज है, भ्रमर है वो सारग्राही होता है, सारग्राही जानते ना, भ्रमर एक छोटी सी कीड़ा जैसा होता है, भौना देखे ना बीज, छोटा कीड़ा होता है लेकिन वो ठीक सार को ग्रहण करते, मधुमक्खी के बाद में कहता हूँ, मधुमक्खी गुनगुन करता है, वो छोटी सी मक्खियां होता है लेकिन जाता है एक कोई फूल के ऊपर बैठता है, वो फूल के ऊपर बैठकर ना तो फूल को पेड़ से तोड़ता है, ना तो कोई उसका पेटाल, फूल के जो पेटाल को क्या बोलते हैं अपने पंखुड़ी है, पंखुड़ी है, कोई पंखुड़ी को तोड़ता है मरोड़ता है कुछ नहीं करता है, बहुत ऐसे बैठता है कि जो कोई उसको दिक्कत ना हो, बैठता है थोड़ी समय बैठता है और उसमें अपना सिरिंज डालता है, अपना हाथ डालता है, डाल करके थोड़ी समय से उनके सार जो उनका रस ग्रहण करता है इतना मीठा, आप सब तो टेस्ट किए होंगे ना, क्या है वो हनी शहद कैसा है टेस्ट उसका, मीठा है ना, क्या ताकत है उसका, आप जैसे महानुभव को दिया जाए मोटी मोटी हाथ शक्तिशाली मसल से और आपका इंस्ट्रूमेंट सब लेकर के जाओ, जाकर के एक फूल नहीं 10-20-50-100 फूल से एक 100 ग्राम 50-20 ग्राम हनी थोड़ा निकाल दो, निकाल पाएंगे आपने मोटे मोटे सिरिंज ले करके बाकी जो करके, पहले तो अब जाएंगे वो पेड़ से उसको तोड़ डालेंगे, फूल तोड़ ताड़ करके उसको लेकर आएंगे और किसी प्रकार से तो उसको आजीटिज नहीं रखेंगे, उसको पीस डालेंगे, ग्राइंडिंग कर डालेंगे पूरा, सारे उसका पंखुड़ी अंदर बाहर सब पीस पास करके चटनी बना देंगे, उसको ब्रश निकाल देंगे, उसको पूरा खत्म कर डालेंगे, पेड़ फूल सब खत्म करके जो जूस निकालेंगे मुंह में लायक देने के लायक नहीं, इतने तीखा लगेगा। हमारे ये करामत है और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम, और ये देखिए छोटी सी, ना तो पेड़ से फूल को तोड़ता है, ना एक पंखुड़ी इधर को इधर मोड़ता है, ना कुछ भी करता नहीं, वो जूस लेकर आता है, वो सेंट ऐसे रहता है, सुगंध ऐसे रहता है, और उसका सौंदर्य ऐसे रहता है, फ्रेशनेस ऐसे रहता है, कुछ नहीं बिगाड़ता, सार लेकर आ जाता है। उसको कहते हैं साराग्राही। हम साराग्राही तो है नहीं, सार ग्रहण करना आता ही नहीं हमको, सारे नष्ट भ्रष्ट कर देने के बाद भी सार पता नहीं कर सकते। भगवान ने इस छोटे से कीड़े को क्या शक्ति दे रहे हैं, वो तो कुछ बिगाड़े बिना सार को ग्रहण कर लेता है, और उसको अभी तक कोई वैज्ञानिक को ढूंढ के नहीं निकाल पाएगा, ये सिरिंज में क्या रखा है, छोटी सिरिंज उनके पास है, क्या पावर है उसमें, खींच लेता है, मिलता नहीं कोई कुछ। तो परीक्षित महाराज भी इसी प्रकार थे, सारंग सारग्राही। उन्होंने कली को देखा, मार सकते थे लेकिन एक सार वस्तु देखा, इसलिए कली को छोड़ दिया रहने के लिए, मुझे जा रहा हूं। और पूछे कौन सा चीज इसे देखा, बोले उन्होंने देखा कि कली युग में एक विशेष गुण है कि कोई भी चीज, कोई भी बुरा चीज, कोई भी बुरा चीज, बुरा से बुरा चीज आप मन में सोचो, उसका कोई परिणाम नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आप। जब तक इस बुरा को आप कर्म में नहीं करें, जैसे आप मन में सोचे उसका गला काट दूं, उसका टांग तोड़ दूं, उसका धन ले जाऊं, उसके बेइज्जत कर दूं, उसका अपमान करूं, मन में कितने सारे सोचो बैठ कर, दो चार दिन, आठ दिन, महीना भर सोचते रहो, आपको कोई पुलिस आकर अरेस्ट नहीं करेगा, ना जिसके बारे में सोचते वो भी आपको सार बोले कहेगा, कि गाली भी नहीं दे, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे जब तक आप एक्शन में ना करें, जो आप सोच रहे एक बार एक्शन में कर दो, थोड़ा सा पूरा नहीं जो सोचा, 10% 2% भी करो, तो वो भी आपको पिटेगा, पुलिस में फिर केस दे देगा, आप बंद हो जाएगा, फिर तो बड़ा हो जाएगा। जब तक आप कार्य में इंद्रिय के द्वारा एक्शन में नहीं करें, मन में कितने सोचे महीने दिन, कुछ नहीं फल मिलेगा। लेकिन अलग अलग युग में ऐसा नहीं होता था, अलग अलग युग में अगर मन में सोचा तो वो पकड़ लेते, तू सोचा उनके बारे में, सोचा था वो जान लेते थे और अब दंड मिलता था, मानसिक क्रिया का भी दंड मिलता था, क्योंकि तभी जमाने में पुरुष और राजा ऐसे समर्थ होते थे, वो आप देखकर समझ लेंगे मन में क्या सोचता था उनके बारे में। यस, आजकल वो कोई समझ पाने का किसी क्षमता नहीं, तो इसलिए नहीं हो पाता, वो दंड भी नहीं, वो डिलीट कर दे उसको, इस प्रोग्राम आजकल डिलीट है, वो है ही नहीं आजकल, है ना, वो व्यवस्था नहीं रखा। लेकिन क्या व्यवस्था रखा है, ये गलत काम अगर सोचेंगे वो डिलीट कर दिया, कुछ का प्रभाव नहीं, लेकिन कोई अच्छा कार्य सोचेंगे मन में, अब किए नहीं, केवल मन में सोचे तो उसका पूरा परसेंट रिजल्ट मिलेगा कल युग में, और दूसरे युग में अच्छा कार्य अगर जब तक नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, सोचने से नहीं मिलेगा जब तक नहीं करेंगे, ये कल युग में जस्ट उल्टा है, बुरा कार्य जब तक नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा सोचने से, अच्छा कार्य जब तक नहीं करें, करने से तो क्या होगा पता नहीं, साक्षात होगा, केवल सोचने मात्र से उसका फल मिल जाएगा। समझ में आ रहा क्या गुण था, मतलब जैसे आज एकादशी तिथि है, आप बोलते हैं फास्टिंग मुझे करना नहीं आता है बहुत, कौन बुरे आदत है हमारा, बुरा आदत है दिन में चार बार खाने का, एकादशी पता नहीं क्यों आ जाता है, सब बोलते हैं महात्मा लोग उपवास करो उपवास करो, कोई बात नहीं उपवास कर नहीं सकता, खाना खाता, एक बार सुबह उठ करके मन में देख लो कालिंदा जी एकादशी, मन में सोच तो लो कि मैं आज एकादशी सोचता हूं, आज मैं पूरा निर्जला व्रत रखूंगा उपवास करूंगा, मन में सोच लो, सोचने के बाद फिर फंस गया खाना देख कर, फिर खा लो चलेगा, एक बार सोच लिया तो फल तो मिल जाएगा ना। लेकिन हम इतने हुड़बक पति थे, सोचेंगे भी नहीं, एक बार कर भी नहीं पाएंगे काम से, अरे नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, मन में तो कर लो, कौन सा खर्चा लगता है, सचमुच कोई फैसला नहीं करना थोड़ी बढ़ता, कोई इतना परेशानी थोड़ी उठाना पड़ता, एक सेकंड में सोच लो, एक सेकंड में सोचने भी नहीं आते आपने, कोई अच्छा कर्म मन में एक क्षण के लिए संकल्प कर लो कि उनका भला हो जाए, भगवान उसको सद्बुद्धि दे दे, उनका वो हो जाए कि उनका ये हो जाए, इस प्रकार के कभी कल्याण किसी का मन में सोचने में नहीं बनता। अगर बहुत बार सोचने बनता है उनका टायर पंचर हो जाए, उनका घर से चोरी हो जाती है, अच्छा उनका ये बात कई बार मन में आता है कि उनका अच्छा हो जाए, मन में कभी स्वप्न में नहीं आता, सोचने में नहीं आता। क्या करें, तो हम लोग का आदत स्वभाव इतने बन चुका है कि मन में सोचते भी नहीं, सोच भी नहीं पाते कल्याण किसी का, भला किसी का, अच्छा ही सोच नहीं सकते, केवल बुरा ही बुरा सोचता है। चलो इतने बुरा सोचते हैं तो कलयुग के युग धर्म के अनुसार कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उस प्रभाव पड़ता, अगर मानसिक सोच का हमको परिणाम मिलता तो एक भी व्यक्ति आज घर में नहीं होता, सारे और कहीं दंडित के स्पेस में, जेल में, कोई कहां कहां घूमते, क्योंकि सब हर मिनट में बुरा ही सोचते हैं। तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, कलयुग का जो विशेष गुण देख करके परीक्षित महाराज बोले ना उसको तो रखना चाहिए। मैं जानता हूं कलयुग में लोगों का जो आदत होगा दिस इज गुड, ये रहेगा तो कम से कम बच जाएंगे। अब कभी कस्मिन काले अगर कभी किसी का भला सोचा, कभी किसी का अच्छा सोचा तो उसका फल तो मिलेगा, कर ना पाए सोचा तो सही उनका परिणाम मिलेगा उसको, ये व्यवस्था रखें। उसी को देख करके परीक्षित महाराज ने कलि को मारे नहीं, छोड़ दिए, है ना। तो ये गुण दृष्टा थे उन्होंने, तो कौन सा बात पर नहीं बात आया, अर्जुन के बाद मन के संयमता पर मैं कहता था, नहीं नहीं कल्प वृक्ष की बात मैं कह रहा था। कल्प वृक्ष हमको इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत डेंजर होता कि हम मन में सोच ले तो आसन हो जाता, तो इसलिए बोले नहीं 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 कल्प वृक्ष देना गड़बड़े उन लोगों सब मर जाएंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका। लेकिन वहां कल्प वृक्ष रखा था, वो बाई चांस चला गया था, उनका इंसिडेंट हो गया। कल्प चिंतामणि जिसका घर बाड़ी बना है, फर्श बना है, कल्प वृक्ष जहां है, और क्या है चिंतामणि प्रकर सदमस कल्प वृक्ष लक्ष्य अवृतेश सुरभीर अभिपालयंतम, लक्ष्य लक्ष्य गाय सुरभि गाय अभिपालयंतम पालन किया जाता है वहां, सुरभि गाय इतने सारे हैं, सुरभि गाय भी कामधेनु कोटि के हैं, वो भी कुछ कम नहीं, वो भी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। इतने सारी एजेंसी होकर मनोकामना पूरा करने के लिए कोई ऐसा मन में कामना ही नहीं करते हैं, गड़बड़ी तो ये पता नहीं यहां क्यों नहीं होता, उनको फुर्सत नहीं मिलता, हम इतने लिस्ट देते लेकिन यहां वो आइडिल खड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछता। और एक थर्ड लाइन में कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी लक्ष्मी कौन होते हैं, किसकी लड़की का नाम लड़की लक्ष्मी रख दिया वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी माने सौभाग्य की देवी, सौभाग्य समझते ना, गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून का जो अधिष्ठात्री देवी है उनके नाम है लक्ष्मी। ओ लक्ष्मी देवी भाग्य की देवी लक्ष्य लक्ष्य संख्या में हाथ में झाड़ू लेकर के खड़े रहते हैं, संभ्रम मतलब एक बार बो डाउन होकर के नम्र होकर के हमको थोड़ा चांस मिल जाए, हमें थोड़ा सेवा कर लें। अरे कोई गंदा ही नहीं तो झाड़ू क्या करे, कोई महिला होता तो बोले झाड़ू कर लो, ना हो ही नहीं सकता, चिंतामणि से बना हुआ, फिर भी हमको थोड़ा चांस मिले किसी प्रकार सेवा करने के लिए, बाकी कोई सेवा करने का तो आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम झाड़ू लेकर आए, थोड़ा बहुत कोई महिला नहीं है सफाई, लेकिन फिर भी थोड़ा कर लें, लेकिन उनको भी परमिशन नहीं मिल रहा, सहस्र सहस्र लाइन में खड़े हैं लेकिन नहीं मिल। जब उनका लाइन में खड़े रहे सेवा भाव लेकर के उनको चांस नहीं मिलता है तो हमको चांस मिलेगा, सोचिए सही, किस प्रकार हम सोच सकते मिल सकते, संभव ही नहीं। उनका पास इतने सेवा का भाव है, वो हमारा पास क्या है? उसको इतने लोगों से जरूर क्या हो सकता है उसको लगाना, घड़घड़ी आवाज करता है। तो हमारे पास भी भावना है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। कौन सा भावना है? सेवा करने का भावना तो नहीं है, भोग करने का भावना नाक से सीख तक हर सेंटीमीटर में भरा पड़ा है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं कि जहां भोग भावना ना हो, हर प्रकार से भोग अभिलाष है। और इसी कारण से हम लोग तो यहां आए, भोग करने का इच्छा को लेकर के यहां कष्ट भोग रहे हैं। अगर सेवा करने का इच्छा होगा तो फिर ये कष्ट से उतर करके हम वहां चले जाएंगे, फिर सुख ही सुख प्राप्त होगा हमको, सुख शांति तभी प्राप्त हो सकता जब हम सेवा की भावना रखेंगे, क्योंकि ओरिजिनली हम सब सेवक हैं। सेवक कभी भोक्ता तो नहीं बन सकता। सेवक अगर सेवकाई का विचार रखे, भावना रखे, तो सुखी होगा। जो जैसा है ऐसा करे तभी होगा ना भाई। एक नट है, एक बोल्ट है। जो साइज का नट है उस साइज का बोल्ट अगर उसको लाके फिटिंग करे तो फटाफट लग जाएगा। अगर वही साइज को छोड़ करके बाकी 138 प्रकार के साइज का बोल्ट लाओ, उसके फिटने आपको लगाओ तो अनथ्रेड होगा, लगेगा ही नहीं। आपके समय और सामर्थ्य के केवल अपचय होगा, टाइम एनर्जी का वेस्ट हो गया ना, हो गया नहीं। जो पर्टिकुलर साइज जो नहीं लाए तब तो नहीं हो। तो ही हाल है हम लोग का भी। हम जो है जिसके लिए है, जिस अर्थ में है, अगर वो नहीं हो कितने प्रकार के एडजस्टमेंट करो कैसे हो सकता। जैसे जल के रहने वाले एक जलचर प्राणी, मछली के ले लो, मछली के सब जानते हैं ना, मछली पानी में रहने वाला है। उसको अब पानी से उठा लाए और दीपक जी के यहाँ ले आए, उनका सुपर व्यवस्था है घर में, बहुत बढ़िया मकान है, एसी ऑन कर दो, डनलप बेड लगा दो और हर प्रकार के पकवान खाने के लिए दो, हर जो व्यवस्था जो चाहे व्हाट एवर यू वांट सब देंगे। सब देने के बावजूद तो सुखी हो पाएगा, खुशी होगा? हर प्रकार की व्यवस्था है लेकिन बोलेगा पानी कहाँ है, पानी नहीं है। हर प्रकार से डिग्री दे दो उसको, कुछ भी दे दो, लेकिन संतुष्ट होगा? वो तो मुरझा ही जाएगा, सुख सुखते जाएगा, कष्ट ही कष्ट भुक्त रहेगा। कितने दिन उनको कितने प्लानिंग करके व्यवस्था करके दो, कभी सुख नहीं हो सकता। पानी में चला जाए भले कुछ भी नहीं, तो उनका फिर खिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग इस जड़ जगत के नहीं है, हम लोग जड़ नहीं है, हम लोग क्या है? चेतन है। चेतन प्राणी चेतन से ही सुखी हो सकता है, जड़ से कैसे हो सकता है? जड़ से कोई संबंध ही नहीं उसका। जैसे जलचर प्राणी जल में रह करके सुखी हो सकता, स्थलचर प्राणी स्थल में रह के सुखी हो सकता, तो चेतन प्राणी चेतना में रहकर सुखी हो सकता, जड़ में रहकर हो ही नहीं सकता। कितने भले व्यवस्था कर लो उनके, हो नहीं सकता, है ना? नहीं। और हम चेतन है और आ चुके हैं कहां पे? जड़ जगत में। जड़ जगत में आकर के सच्चाई सब सोच कर देखो, 20 घंटा हमने टाइम दे रखे हैं, और ज्यादा दिए नहीं, अगर देते उसको भी लगा देते काम में। और 24 घंटा जो दिन रात सुबह से शाम, शाम से सुबह तक जो ही हम चेष्टा करते रहते हैं, जिस प्रयास करते रहते हैं, जो कार्य में लगे रहते हैं, उनका लक्ष्य यही होता ना, हम सुखी हो जाए, है ना? नहीं। सुखी होने के लिए खाते हैं, सुखी होने के लिए सोते हैं, सुखी होने के लिए पीते हैं, सुखी होने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, घर बनाते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हर कोई चीज सुखी होने के लिए तो करते हैं ना, लेकिन सुखी हो पाते हैं? गवर्नमेंट भी पंचवर्षीय, दस वर्षीय, विंश वर्षीय, पंचविंश वर्षीय योजना करते करते हुए योजना कर करने वाले मर जाते हैं, एग्जीक्यूट करने वाले मर जाते हैं, ना वो सुखी होते ना हम सुखी होते हैं। एग्जीक्यूटर से कोई नहीं हो पाते सुखी, हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि असलियत में हम चेतन है और ये जड़ है। फॉर्मूला ही गलत है, कैसे सुखी हो सकते? हो ही नहीं सकते। जिस उपाय से सुख प्राप्त किया जा सकता है उस उपाय को हम नहीं ठीक से अवलंबन नहीं करेंगे तो कैसे सुखी होता? जैसे एक उदाहरण में बताऊं, हम सभी एक एक शरीर हैं, तो इस शरीर में हाथ है, पैर है, सर है, आदि सब अंग हैं, वो सब काम करते हैं ना। लेकिन इस शरीर में एक अंग है पेट, सारे जो काम करके उपार्जन करते हैं, बनाते हैं सब, वो कुछ नहीं भोग पाते हैं। डालते कहां पे? पेट में डालते हैं। एक दिन से बैठ के विचार किए, व्हाट इज गोइंग ऑन, पर बोलते मैं ढोता हूं पूरे शरीर को, सारे पेट को भी, सर को भी, हाथ में सारे, मैंने इतना काम करता हूं, ढो ढो कर सबको ले जाता हूं। हाथ बोलते तू अकेला करता, मैं सारे परिश्रम करता हूं, दुनिया सारे करता हूं, बनाता हूं, रोकता हूं, क्या क्या मुझे बिजी रहना पड़ता है। आंख ना कर, बोले हम भी बिजी रहते हैं, मैं देखता हूं, ये करता हूं, सारे इतने काम करते हैं, लेकिन एक दिन कोई रसगुल्ला टेस्ट किया? सारे पेट में डालते हैं, लेजी बम बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। हम सारे एक्टिव रहते हैं, इतने काम कर करके थक जाते हैं, वो तो चुपचाप बीच में पुतुल बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, सारे भोगता रहता है। नॉनसेंस, लेजी, कुछ नहीं देंगे उसको। रिबेलियन शुरू किए, क्या किए? हड़ताल शुरू कर दिया, आंदोलन। बोल नहीं, ये कैसे हो सकता, हम नहीं देंगे कुछ, कुछ नहीं करता, आलसी बैठा रहता है, तू भोग करेगा, हम सारे खटते खटते मर रहे हैं, हम तुझे नहीं देंगे आज तो। बोला ठीक है भाई, मैं तो खट नहीं सकता हूं, मेरे लिए सब आप खटते हैं, आप मुझे नहीं देंगे तो भाई ठीक है, अब देख लो, मत देना भाई। बढ़िया पकवान बनाए थे, पैर वाला दो चार मुझे दे दो, हाथ भी दो चार भी पकड़ लिया, नाक कान आंख जहां जहां से सब ठोस ठास कर पकड़ लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, टेस्ट नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। घंटे दो घंटे, दो चार दिन तक पड़े रहे पकड़ करके, और उल्टी चिट्टी मिट्टी आकर के परेशान किए, काटे उनको, दुर्गंध होने लगा, लेकिन स्वयं वीक दुर्बल हो गए, मरने लगे स्वयं। ये क्या हो रहा है? अरे तू ये सब करने से थोड़ी सुखी हो पाएगा, ना भोग पाएगा, तुझे भोगना है, तुझे टेस्ट पाना है, बल प्राप्त करना है, तो ये आलसी में डालना होगा। वहां डालो तो पैर को भी, हाथ को भी, नाक को भी, कान को भी, सब जगह को सब कुछ सप्लाई मिलेगा यहां डालने से। यहां नहीं डालोगे, आप इंडिपेंडेंटली बोलेंगे हम करेंगे, उससे अलग हट करके इम्पॉसिबल। ठीक इसी प्रकार एक पेड़ में हजारों पत्ता होता है, कई शाखा प्रशाखा होता है, कई फूल कई फल होता है। आप बोलेंगे गर्मी पड़ता है, उसको पानी चाहिए, तो इंजेक्शन सीरीज में पानी भर भर के हर पत्ता में पानी दूंगा, हर फूल में, हर फल में, हर शाखा में, संभव है? एक पेड़ में जितना पत्ता सब में जाकर पानी दे सकते हैं आपने? इतने बड़े लैडर लेकर के अपने आप तो जिंदगी बीत जाएगा, पर इतने पत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूरे लाइफ डेली अगर 10-20 पत्ता में इंजेक्शन देते जाए लगे, एक पेड़ में आप जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी नहीं कर पाएंगे। अमर भी जा सकते हैं, गिर करके पहुंच भी नहीं सकते हैं, और वो देने से पर भी वो पेड़ सूख के मर जाएगा, है ना? नहीं, लेकिन उसका जड़ है, वहां जल दे दो, आसान भी है, और पूरे शाखा प्रसा पत्तल फल फूल सब सिंचाई हो जाएगा, है ना? नहीं, ठीक इसी प्रकार अगर आप कल्याण करना चाहते हैं किसी का भी, किसी भी प्राणी का, तो संपूर्ण जगत का जो जड़ है, संपूर्ण विश्व का जो जड़ है, उसी में अगर हम उसी को संतुष्ट करें, जिस प्रकार से संतुष्ट होता है, अगर उसको सेटिस्फाई करें, तो जगत का संपूर्ण अंग प्रत्यंग अणु परमाणु तक सेटिस्फाइड हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। अगर उसे सुखी सुख पहुंचा जाए, सुखी किया जाए, तो समस्त प्राणी सुखी हो जाए। लेकिन हम ऐसा ना करके इंडिपेंडेंटली सुखी होना चाहते हैं, और ना जाने कितने जन्मों से प्रतिदिन हर समय बुद्धि वृत्ति इंद्रिय के द्वारा पूरी दम से लगे हैं, अभी तक नहीं हो रहा है, सुखी हो ही नहीं सकते। कई लाखों करोड़ साल तो प्रयास कर करते अभी भी नहीं हुआ, और आगे तक भी करते चलो तब भी नहीं होगा, फॉर्मूला गलत है, कैसे हो सकता। जो नट ले, जो साइज बोल्ट चढ़ना चाहिए नहीं हो तो कैसे हो सकता। आज नहीं कल हो जाएगा ऐसे मत सोचो, कल भी नहीं होगा, नहीं नहीं 8 दिन बाद हो जाएगा, ट्रायल करो तब भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो फिर कैसे होगा, जो जिसका है, इस जगत के जो जड़ है, सभी प्राणियों के जो जड़ है, जो मूल है, जिसको संतुष्ट करने, जिस सबका जो पेट है, जिसको संतुष्ट करने से सारे संतुष्ट होते हैं, उसी को ढूंढना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उनके बारे में। वो कौन है? वो है भगवान। ये सबके मूल है, अगर हम उनको संतुष्ट करें सब संतुष्ट हो जाएंगे, तो और उनको छोड़ करके हम सेपरेटली संतुष्ट होना चाहेंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। शास्त्र में कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आप जगत के हित करना चाहते हो, संपूर्ण जगत के, हम तो कर ही नहीं सकते, जगत तो सबका पास पहुंच भी नहीं सकते हैं, और सब प्रकार से हित कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अब करना चाहते हो, इजी प्रोसेस क्या है, जो जगत के जड़ है कृष्ण गोविंद, उनको, उनके लिए करो, तो सारे जगत को पहुंच जाएगा, जगत हित हो जाएगा। तो गोविंद कृष्ण को तो हम जानते भी नहीं, कौन है, कहां रहते हैं, उनका आईडी प्रूफ किसके पास है, किसी प्रकार के फोन नंबर भी तो नहीं है, तो कैसे जाने, उनको कैसे खुश करें। तो शास्त्र कहता है आपको जानना जरूरत नहीं, उन्होंने एजेंसी रखे हैं, है ना, कोई बड़े बड़े गवर्नमेंट तब एजेंसी खुल रखा है, आप इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है पूरा, वो विद्युत मंत्री के पास घर में जाकर देना नहीं पड़ेगा, यहीं ऑफिस काउंटर खुला है, वहीं जाकर कर दो। तो काउंटर लगा रखे हैं उन्होंने हर जगह में, बोले क्या काउंटर, किसी पता चल गया, बोलते 3 काउंटर उनका हर जगह में अवेलेबल है, क्या, देवता ब्राह्मण और गाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय, ये 3 उनके एजेंसी है, ये 3 अवेलेबल सब जगह में है, ये तीनों को सुखी करो तो वो सुखी हो जाएगा, वो सुखी होने से सब सुखी हो जाएंगे। हम इसी 3 को ही सुखी करना नहीं चाहते, बाकी को भले कर सकते हैं, इन 3 को नहीं करेंगे तो कैसे हो सकता है, नहीं सकता। तो इस प्रकार केवल मूल को सुखी करके सबको सुखी किया जा सकता है, लेकिन हम ये प्रयास ना करके और हमारे मन की जो पुशिंग है, मन की चाह के हिसाब से कार्य करते, केवल दुख ही दुख हाथ लगता है। तो मन को कर पहचानने के लिए प्रयास किया आप लोग ने? अब तो प्रयास नहीं करते, हमेशा वो आपको कमांड करता है, एक दिन तो पूछो भाई हुआ रही हूं कभी उनके बारे में थोड़ा जानकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए ना। नहीं भाई तो कहां रहता है, थोड़ा तो आपका परिचय तो बताओ, कुछ तो बताओ आपके बारे में। भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणं मनस्चास्मि, इंद्रिया जानते ना, तो सेंसेस है हमारे 5 तो है, जो लेबर क्लास के इंद्रिय है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, श्रमिक इंद्रिय है, कौन है जानते ना, नहीं, कर्म इंद्रिय जिसको कहते हैं, जिनमें काम करते हैं, बेचारे लेबर है, उनके पास कुछ ज्ञान धन नहीं होता, उनके पास छोड़ दो, उनके ऊपर में सुपरवाइजर ग्रेड में और पांच इंद्रिया होते हैं, जिस पांच इंद्रिया के द्वारा जो भी कुछ हम ज्ञान कैसे बनते हैं उसको, उनको जो भी कुछ आप अभी तक ज्ञान प्राप्त किए हैं और आगे चलकर करेंगे, केवल इस ज्ञान इंद्रिय के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इस जैसे कोई गंध किसका है कैसे जान सकते हैं, कैसा सेंट है आंख से देखकर जान सकते हैं, कान से जान सकते हैं, जीवा से जान सकते हैं, हाथ में टच करके जान सकते हैं, एक एजेंसी उसका फिट किया गया, ये है ध्यान सक्षी नासिका, जिसके द्वारा इस प्रकार के ज्ञान होगा। रूप के ज्ञान, इसका रूप कैसा है, हाथ से पकड़ करके, कान से सुन करके और नाक से सूंघ करके, जीवा से चाट करके जान सकते हैं, कैसे आँख से हो सकता है। इस प्रकार सब इंद्रिया का विशेष प्रकार के ज्ञान के ज्ञान ग्रहण करके क्षमता है, और क्षमता के अनुसार वो ज्ञान ग्रहण करके बता सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस पांच प्रकार के ज्ञान इस पांच प्रकार के इंद्रिय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो लेकिन एक और इंद्रिया है इस पांचों से ऊपर, वो है मन। बोलते हैं कि भगवान बोलते मैं मन हूं इंद्रियों में, वो सबसे सूक्ष्म है, दिखाई नहीं भी पड़ता लेकिन है मौजूद। सूक्ष्म इंद्रिय इसलिए कहते हैं, ये इंद्रिय हम देख सकते हैं, आंख नाक कान हम देखते हैं, पकड़ते हैं, जानते हैं। कोई खराबी होता है तो ऑपरेशन कर देते हैं, आंख खराब होते चश्मा लगा लेते हैं, कान खराब हो तो एक क्या लगाते हैं हम जानते होंगे, कुछ लगाते ना मशीन है, हाँ हियरिंग का, हर प्रकार जो इंद्रिया है उनका कुछ ना कुछ तो ये रखे हैं छोटा। लेकिन मन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मशीन लगा, कोई डॉक्टर पास जाओ लगा थोड़ा नहीं लगाया तो मन क्योंकि सूक्ष्म है, तो भगवान बोलते हैं मैं मन हूं। अच्छा मन है और काम क्या करता है, करा जैसे पर्टिकुलर इंद्रिय का सब काम, एक निर्दिष्ट काम होता ना, कान का निर्दिष्ट काम होता है केवल शब्द के बारे में ज्ञान देना, आंख का एक निर्दिष्ट काम है रूप के बारे में ज्ञान देना, ऐसे सब इंद्रिय का निर्दिष्ट ऑब्जेक्टिव है निर्दिष्ट ज्ञान देना। तो मन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या निर्दिष्ट ज्ञान दे सकते हैं, क्या काम करता है, जानते हैं मन का काम भी निर्दिष्ट किया गया है, तीन काम करता है, तीन से ज्यादा नहीं कर सकता, तीन प्रकार के काम है उसका, क्या है बोलते हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, है ना, नहीं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये तीन, ये बदमाश मन का काम है। बाकी सोच सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता है, ना नहीं? इच्छा कर सकता है, इच्छा को पूरा नहीं कर सकता है, ना नहीं? और अनुभव करा सकता, अनुभव कर सकता, अनुभव कराने के लिए मदद कर सकता है। तो जैसे अभी हमको गर्मी महसूस होता है, ये किसको महसूस होता है मालूम, हमको महसूस नहीं होता, मन को ही महसूस होता। कभी कभी आपको पता चलता है, अभी गर्मी के सीजन में आम होता ना, आम इस सीजन में होता ना, फर्स्ट क्लास यहाँ आपके राजस्थान में सबसे हाई क्वालिटी आम किसको कहते हैं, यहाँ दशहरी आता है क्या, आता है, चलो जो भी आपका सबसे टॉप ग्रेड का क्वालिटी का आम हो, हाँ चलो जो भी हो जिसको आप मानते हैं सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी के आम हो, तो जब घर में ले आते हैं उसका सेंट से ही आपका आपका जो ये बढ़ जाता है और सालिवा निकलने लगता है ओह उसको जूस बनाया जाए, और जूस लेने के लिए बड़ा इच्छा होता है, बहुत उसका महिमा गान किए तो उसको फकीर साहब बोले चलो मांग के जूस, सब मैंगो जूस करते हैं। तो आप आए लेकिन आप थके थे, आके सो गए। सो गए तो उन्होंने क्या व्यवस्था की, एक रबड़ का नली लाए, पाइप ला करके, एक किलो से कुछ ज़्यादा भी और वो हाई क्वालिटी मैंगो जूस बना करके उतार दिए गले से नीचे, पैसे डाल दिए, सोए थे, पूरा पिला दिया आपको, एक लीटर से ज़्यादा पिए। तो आप उठे, बोले आप मैंगो जूस कैसा लगा, कहाँ दिया मैंगो जूस, अरे एक लीटर पी गया, एक ग्राम्स भी नहीं दिया, पेट में है लेकिन वो बोलता ना मैंने पी, मैंने कहा टेस्ट नहीं किया, तो पेट को नहीं चाहिए था, गला के भी नहीं चाहिए था, वो चाहिए था मन को, मन गला पेट में काम नहीं करता, वो जीभा से लेता है, जो टेस्ट है जीभा का काम है, लेकिन मन के बिना वो जीभा भी ना करना है, तो मन लेता है, वो फीलिंग करता है, वो फील नहीं हुआ तो बोलता है क्या, टॉयलेट होता है, पतला टॉयलेट हुआ, मैंगो का जूस निकलता है, लेकिन बोलता है मैंगो जूस खाया नहीं है, कैसे होता है, क्योंकि मन को नहीं लिया ना, नहीं होता, मन सुप्त था। तो ये मन ऐसा है, वो तीन प्रकार के क्रिया मन का सीमा रेखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मन का जो इमीडिएट हायर अथॉरिटी, हायर अफसर है, वो कौन है, बुद्धि है। बुद्धि का भी एक काम है, क्या काम है, बुद्धि निर्णयात्मिका, डिसीशन लेने वाला है बुद्धि, मन डिसीजन नहीं ले सकता ना, डिसाइडिंग फैक्टर है इंटेलिजेंस, बुद्धि डिसाइड करता है। मन बेचारा प्लान तो बहुत देगा ला करके, आपको बहुत प्लान देगा आपको ला करके, मन जो प्लान देगा अगर आपको करने के लिए डिसीजन ले लेंगे तो मर देगा, मार कर छोड़ेगा आपको। भगवान भगवद गीता में दूसरा अध्याय में कहते हैं एक श्लोक की, क्या श्लोक है, जो समुद्र में वा प्रविशंति अद्भुत तथैव काम आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, आप मतलब जल, बोलते हैं कि समुद्र में बारिश के समय में चारों तरफ से नदी नाला से पानी आकर भरता है, सब जगह से पानी आकर उनसे भरता है, आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशंति अद्भुत, फिर भी समुद्र में हजारों ओर से नदी नाला ऊपर से नीचे से साइड से पानी आकर घुसता है, लेकिन समुद्र अपना जगह पर रहता है, वो नहीं जाता है, अचलम प्रतिष्ठम वो अपने प्रतिष्ठा में रहता है। समुद्र माप, समुद्र अपने माप चुप में जैसे हिसाब में रहता है, कितने भी पानी डालो वो उसको एक्शन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक इसी प्रकार तथैव काम प्रविशन्ति अद्भुत, इसी प्रकार मन क्या करता है, हर सेकंड में, हर सेकंड में नहीं तो 100-200 प्लान तो देता है लाकर हमें, है ना, नहीं आपको बस कम हो सकता है, हमारे पास इतने आ जाता है ना,
हमारे पास भी कमी नहीं,
कमी नहीं, कमी नहीं, पास भी कमी नहीं, बोलते इतने इतने अचल, मैंने देता रहता है कंटिन्यूसली, जब तक नहीं सो जाते फुर्सत, तो आप जागे तो तब शुरू हो जाता है तुरंत, कभी कभी अवचेतन अवस्था सपनों में भी देता रहता है, छोड़ता नहीं, डीप स्लीप में जब तक नहीं जाते एक्टिव रहता है, सप्लाई देता रहता है, लेकिन वो आता रहता है जैसे, फिर भी समुद्र उसको लेकर भी अपने प्रतिष्ठा में रहता है, नहीं उसमें बढ़ता है उस भाव से, ठीक इसी प्रकार जो महापुरुष मन के द्वारा अमाप अनगिनत प्लान उसके अंदर प्रवेश करते हुए हर सेकंड में उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता, आने दो उसको, नहीं कुछ नहीं करने का, जितने विचार आने तो आने दो, आए जाए, आई एम गोइंग टू डू नथिंग, मैं तो हरे कृष्ण के अलावा कुछ करूंगा नहीं। तो बोलते हैं सशांति मापनोति न काम कामी, वो शांति प्राप्त कर सकता है जो कामना को एक्शन में पूरा करने चाहेगा, वो कभी शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता, मन जो प्लानिंग दिया अगर उसको करने बैठा तब तो गया, आप बीत गए मर गए फिर तो कभी नहीं शांति प्राप्त कर सकते, लेकिन जो उसको नहीं करता है सौ शांति में आपन होती वो शांति प्राप्त करता है। तो अभी शांति फॉर्मूला क्या है, अगर आप मन को जीतना चाहते हैं, आप बोलते हैं मन नहीं लगाना देता, तो मन को अगर आप लगाना चाहते हैं उसको रास्ता में लाना चाहते हैं तो ही एक उपाय है कि मन के जो तीन काम है उसको ना करो, हमेशा रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, टोटल रिजेक्ट। वो हर सेकंड में कितने बढ़िया बढ़िया प्लान लाएगा, एवरीथिंग रिजेक्ट, फिर लाएगा एवरीथिंग रिजेक्ट, फिर लाएगा एवरीथिंग रिजेक्ट, कुछ एक भी सिलेक्ट ना करो तो हद हो जाएगा, बोलो बेकार छोड़ो ये जो बोलता वही करें। सब अब मन आपका बस में आएगा, अगर आप तो मन का काम करने चले तब तो कमाल, तब तो हक ना जा करके छोड़ेगा खत्म करेगा कभी नहीं। ये तो डिसीजन लेना चाहिए बुद्धि में, डिसीजन लेके मन को कभी ना माने, लेकिन मन को माने बिना काम ही नहीं हो सकता ना। तो किसका मन को माने, एक मन के बिना जैसे आप अभी सुनते हैं, मैं कुछ बोलता हूँ वो सुनते हैं, कभी कभी मेरे सामने बैठे दो कान खुले हुए कोई ईयरप्लग नहीं लगाया, अगर आपका मन साथ में नहीं है तो बोलते अच्छा ये बोल रहे थे क्या, अब सुने नहीं बैठे थे मेरे सामने, ओ मैं थोड़ा अनमाइंडफुल था, है ना, आंख खोल कर बैठे सामने चार आदमी आए बैठे चले गए, अच्छा आए थे क्या, अरे तेरे सामने तो आया था, ओ मैं अनमाइंडफुल था। माइंड साथ में ना हो तो आंख खुल कर नहीं दे सकता, कान खुल कर सुन नहीं सकता, कुछ भी टेस्ट कुछ भी काम नहीं करते, सारे इंद्रिया बेकार है मन के बिना, तो मन के बिना काम ही कैसे चले। हम मन के प्लान को रिजेक्ट कर दें तो हम कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं, मन के आधार पर ही तो कर्म होगा, बाकी सारे इंद्रिया कुछ काम नहीं कर सकते मन के अलावा। यस काम के लिए मन चाहिए, लेकिन आपके मन के अनुसार काम मत करो, आपके मन जो प्लानिंग देता है सब रिजेक्ट कर लो, सारे 100% रिजेक्ट। तो किसके अनुसार करूं, जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, कृष्णा तो कहां गए अभी पता नहीं, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उनके आदेश के अनुसार आपको आदेश करते हैं बताते, उनके मन का अनुसार करो तब चाहिए। कोई एक मन तो चाहिए, उनके मन के अनुसार करो, आपके मन के अनुसार ना करो, सब मन धीरे धीरे रास्ता में आ जाएगा। बोला बेकार हमको गुस्सा भी नहीं बताया है तो तभी रास्ता, नहीं तो थोड़ा सा 1% उनको हेल्प करो तो लाखों परसेंट काम करो। बहुत बार ओके, किसी का कोई प्रश्न है, हाँ जी जी हाँ जात रूप में मदद कर रहा हूँ। समझ गया आप जो बोलना चाहते हैं, कई कथाकार ऐसा कहते हैं कि परीक्षित महाराज मुकुट पहने हुए थे, सोना का मुकुट था, कली जाकर वहीं बैठ गया। कभी मैं जो क्या फिल्म वगैरह दिखाते ना, क्या बोलते सीरियल, उसमें ऐसे दिखाते हैं कली यहाँ दिखता है बैठ जाकर, ये सर्वद्रुप है, वो शास्त्र प्रमाण नहीं है, ये उनका मनोकल्पना है, स्पेकुलेशन। जो कली परीक्षित महाराज जो देख करके भेष उतार करके पैर पकड़ कर रोया गिड़गिड़ा कांपते रहा, उनका ये साहस होगा जाके बैठ जाएगा उन्हें, तस्मिन काल नहीं, भले वो सोना पकड़ कर बैठे सोना पकड़ कर खड़े रहे वो उनका बस नहीं जा सकता, ये साहस नहीं कर सकता। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों किए, ये भगवत इच्छा कारण। अरे जिस परीक्षित को माँ के गर्भ से जन्म होने से पहले ब्रह्मास्त्र से भगवान बचाए, ब्रह्मास्त्र अमोघ अस्त्र है, उसको बचा दिए, मासूम लड़का जो बोल भी नहीं सकता बिल्कुल असमर्थ अवस्था में गर्भ के अंदर था, तभी बचा डाले, तभी कि ब्रह्म साहब से नहीं बचा सकते हैं, प्यास से नहीं बचा सकते हैं? प्यास क्या ज्यादा पावरफुल है ब्रह्मास्त्र से? सोचने के लायक है ना? जब तभी बता सकते थे तो अभी क्या नहीं बता सकते? नहीं, भगवान अभी चाहते थे कि ये ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं होता हमारे साथ भागवत पुराण आता कि विश्व कल्याण कैसे होता, भागवत नहीं होता कैसे होता? तो इसको प्रकट करने के लिए परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया। कभी कभी ऐसे होता है, अब माता जी लोग पुराने पुराने माता जी लोग जो हैं वो जानते होंगे, घर में जब बेटा के शादी हो जाता है, नूतन बहू आता है, तो घर का काम दाम तो ठीक से जानती नहीं है, कौन सा चीज़ कहाँ रखे कैसे करे, तो उनको सिखाने के लिए शायद रुट जाएंगे उनको सीधा बोलने से, तो एक चाल चलाते हैं। उनका उपाय क्या करते हैं, बेटी को बोलते हैं लेकिन बेटी का कोई दोष नहीं, बोलते हैं बहू को लेकिन माध्यम बनाते हैं बेटी को, इसे करके इसे समझाते हैं ना, नहीं यही तरीका अपनाते ना? ठीक, भगवान भी यही तरीका अपनाते, भगवान से ऐसी शिक्षा सीखते हैं ना। भगवान भी कभी अगर शिक्षा समाज को देना होता है, वो भी अपने भक्तों को माध्यम बनाकर सीखे, भक्तों का दोष नहीं है, उनको माध्यम बनाएंगे। और उपदेश भगवद गीता है, अर्जुन मोहित थोड़ी हुआ था, मोहित हो सकता है अर्जुन? कैसे हो सकता है, इतना तो मोहित हो ही नहीं सकता। और उसका प्रमाण है भगवद गीता ही श्लोक, भगवद गीता श्लोक में भगवान कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवश्च सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। बोलते हैं कि सारे वैदिक वाङ्मय उपनिषद आदि गाय बन गया, सर वैदिक शास्त्र क्या बना, गाय बना। अच्छा, गाय से अब क्या सबसे अच्छा चीज निकालते हैं, दूध। गाय से गाय बन गया, फर्स्ट क्लास गाय आ गया, दूध निकाल सकते हैं अपने, क्या चाहिए फिर, बछड़ा चाहिए, बछड़ा के बिना दूध नहीं मिलेगा। तो बछड़ा कौन बना, अर्जुन बना बछड़ा, गाय हो गया बछड़ा आ गया, फिर दूध मिलेगा? दूध निकालने वाले चाहिए ना, आपको दूध निकालना आता है क्या? नहीं, एक दूध निकालने वाला ग्वाला चाहिए, दूध निकाले तब जाकर के दूध पी सकते हैं। तो दूध निकालने वाला ग्वाला कौन बना, दुग्धा कृष्ण, दूध दूहने वाले कृष्ण स्वयं बने। बोले मैं ग्वाला बनता हूँ, कृष्ण बोले मैं ग्वाला बनू, बछड़ा बना अर्जुन और गाय बने सारे शास्त्र। अभी आप बताइए, राजस्थान में तो गाय हैं बहुत सारे, जब कोई गाय से दूध निकालता है ग्वाला, गाय भी है बछड़ा भी है ग्वाला है, तीनों से जो दूध निकलता है कौन पीता है? नहीं, तीनों से कौन पीता हूँ प्रश्न, गाय पीता है ना, बछड़ा पीता है ना, ग्वाला पीता है, तीनों में से कोई नहीं पीता, समझना नहीं, मतलब दूध किसके लिए निकाले, हमारे लिए। ठीक इसी प्रकार जो शास्त्र रूपी गाय से, अर्जुन रूपी बछड़ा और कृष्ण रूपी दूहने वाला, ये तीनों के लिए गीता है, किसके लिए? हम बोलते हैं अर्जुन को मोह कैसे होगा, जो बछड़ा दूध थोड़ी पीता है, मुंह लगाता है दूध निकालने के लिए, फिर उसको खींच कर यहाँ रख दे, उसको सामने रख करके दूध हम निकाल के ले जाते। तो अर्जुन तक बोला प्रश्न पूछा था सार दूध निकालने के लिए गाय से, बाकी दूध उनके लिए चाहिए के तो पहले से पुष्ट है, हम नहीं देते।
कलयुग का तो टाइम भी निर्धारित हो गया था ना, कलयुग का आने का तो विधि विधान था, और
हाँ विधि विधान
भी था,
आना भी था,
वो भगवान की इच्छा थी, समय
इच्छा
हो गया था, सत्युग द्वापर रहता
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल,
तो वो तो उसका भी आना ही जरूरी था, वो भी विधान ईश्वर का ही था,
ईश्वर का विधान था, लेकिन परीक्षित महाराज अगर चाहते थे उसको भी बदल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ये गुण देखे तो फिर उसको छोड़ दिया, नहीं तो हमेशा कलयुग को डिलीट कर दिए होते, त्रिजोगी कर दिए होते, उनका यह सामर्थ्य था, लेकिन कली को इसलिए रहने दिए, वो तो समझ गए भगवान के प्लान, इसमें कुछ गुण दिए हैं इसलिए भगवान दिए हैं, ये होना ही चाहिए, तो इसलिए दिए। परीक्षित महाराज समर्थ पुरुष हो, एक्शन लेने गए तो एक्शन ले गए होते।
मुझे एक दिन मैंने भगवान से सुबह उठ के प्रार्थना करी, हे भगवान मेरे मन को कंट्रोल कर दे आज आज के लिए, तो उतना ही ज्यादा उछलाओ उतना ही ज्यादा गलत काम। फिर मैंने प्रार्थना ही बंद कर दी तो शांत हो गया।
सही में जब वही प्रसंग में गीता में छेड़ रहा था कि भगवान अर्जुन बोल रहे मैं आसक्त मनो पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय मन मना भव तो मई व मन आधत्संग हमेशा मन को मज में लगाओ मन को वश में करो मन को वश में करो बताते हैं तो मन वश में करना मुश्किल है। अर्जुन खुला खुली बोल दिया भगवान बोले तू बात कहता तो सही लेकिन करना पड़ेगा करने के बगैर काम नहीं चलेगा मैं कैसे करूँ। जब पूछा तो भगवान ने बताया कैसे करें उपाय भी बताए यस इस उपाय में किया जा सकता है यद्यपि बहुत असंभव है लेकिन फिर भी संभव है उपाय बताया गया हम अगर उसको चाहेंगे तो हो जाएगा इस उपाय में करना पड़ेगा। प्रार्थना करने से बोला मैं तुझे बताया करने के लिए वो नहीं करता आकर मेरे पीछे क्यों खड़ा था मैं तुझे बताया कि भाई यहाँ रखा है समझ जाके ले लो मेरे पैसे क्यों कर होता उनको प्रार्थना करने की जरूरत ऑलरेडी बोल दिए डू दिस तो ऐसा करना पड़ेगा ओके और कुछ समझ ज्यादा हो चुका है।